ओम शांति। बाबा के इस मधुबन घर में आप सब ऐसे दिनों पर आए हैं जो साकार बाबा की स्मृतियां हरेक के दिलों में समाई हुई हैं। केवल 18 जनवरी स्मृति दिवस नहीं, लेकिन विशेष 21 तक, क्योंकि 21 तारीख कल बाबा का पहला अवतरण दिवस गुलजार दादी जी के तन में हुआ है। 21 जनवरी 69 और आज 20 है, तो 20 की क्या हालत यज्ञ की होगी वो आप सब विचार कर सकते हैं। कितने मधुबन में रहने वालों के और जो भी देश विदेश में उस समय बच्चे थे उनके मन की स्थितियां क्या थी, किस प्रकार के प्रश्नों की हलचल होगी, आगे क्या होगा, कैसे होगा, अब बाबा की मुरली कैसे चलेगी, कैसे बाबा अचानक चले गए, कोई मन चित नहीं, कोई तकलीफ नहीं, अचानक बाबा ने खेल पूरा किया। तो 3-4 संदेशियों को दादी जी ने बिठाया हुआ था। दादी जी के हाथ में हाथ देके बाबा गए थे और दादी जी एक ऐसी थी जिनको उस समय आंसू नहीं आए, शक्ति थी बाबा की उनके साथ, बाकी तो सब गंगा जमुना बह रही थी। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं कि बाबा कैसे जाएगा, लेकिन दादी जी ने 3-4 संदेशियों को टर्न बाय टर्न, जाओ वतन में पूछ के आओ बाबा क्या करना, आगे क्या करना। कोई को बाबा दिखाई देते थे, कोई को नहीं दिखाई देते थे। संदेशी दादी, संतरी दादी के तन में थोड़ी देर के लिए आ गए पहले 20 तारीख को और थोड़ा सा गाइड किया कि बच्चे बाबा कहीं गया नहीं है, कमरा चेंज किया है और ऐसे ऐसे संस्कार करना है, नहीं तो संस्कार कैसे करें, कहाँ करें, क्या होगा, कोई की बुद्धि में आ ही नहीं रहा था। तो जब बड़े भाई यहाँ सब पहुँच गए तो सब ने निर्णय लिया यहीं करना है जहाँ बाबा खेलते हैं। अब यहाँ के लिए परमिशन चाहिए सरकार की, टोटल इधर उधर भाग दौड़ करने में 20 तारीख तक परमिशन मिली रात को और 21 तारीख को बाबा के रथ को सजाया गया एक गाड़ी में। पूरा डायरेक्शन बाबा के ऊपर से आता था, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और बाबा के रथ को श्रृंगार करने के लिए शिव बाबा संतरी दादी के तन में आ गए, अनुभव लिखा है उन्होंने कि शिव बाबा खुद आए कि मैंने बच्चे का इतना समय रथ यूज किया है, अभी मैं इसका श्रृंगार करूंगा। तो शिव बाबा संतरी दादी के तन में आके अंत समय में फूलों से बाबा का श्रृंगार किया। सुना ये बात, कईयों को नहीं पता होगा, कोई कोई को शायद मालूम हो। और फिर रथ में अच्छी तरह से सब श्रृंगार करके पूरे रथ को सजा के पूरे आबू की परिक्रमा दिलवाई और उसके बाद यहाँ शांति स्तंभ पर दोपहर में संस्कार हुआ और शाम को जब भोग लगा तब बाबा गुलजार दादी को बिठाया गया। और दीदी दादी के बुद्धि में ये नहीं था किसको बिठाया जाए, संतरी दादी को बिठाया जाए या गुलजार दादी को बिठाया जाए, क्योंकि संदेशियां तो बहुत थी। तो संतरी दादी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, गुलजार दादी को बैठाओ, क्योंकि मैं बाबा के बहुत नजदीक रही हूं और बाबा अगर कुछ भी मेरे द्वारा बोलेंगे भी तो लोगों को शक पड़ेगा, शायद संतरी दादी के सब पता है पहले से, उसमें भी प्रश्न उठ सकते हैं। तो संतरी दादी ने बहुत त्याग किया कि नहीं, बाबा का बुलाना है, कुछ भी बात करनी है तो गुलजार दादी को बिठाओ। तो लास्ट समय में गुलजार दादी को अचानक आ गया, आप बैठो गद्दी पर। और गुलजार दादी जब बैठी हैं और बाबा आए हैं तो गुलजार दादी की आवाज बदली नहीं उस समय। थोड़ा सा वातावरण तो ऐसा था ही, लेकिन बाबा ने दादी की आवाज में पूरा एक दो ढाई घंटा मुरली चलाई और पूरे सब डायरेक्शंस, आगे कैसे करना है, क्या करना है, बाबा कैसे आएंगे, किस जनवरी की मुरली में, बाबा ने सब कुछ स्पष्ट समझाया बताया। और दीदी और दादी के सिर पर कलश रखा, ये दोनों को अभी आगे की सेवाएं बाबा के साथ संभालनी हैं। दीदी और दादी जहाँ जहाँ बाबा का जाना होता था, पत्र व्यवहार होते थे, तो ये दोनों मिलकर के इसको संभालेंगे। बैठी तो और सब दादियां भी थी, पर दादी बैठी थी सामने, बाबा की लौकिक बहू ब्रजिंद्रा दादी बैठी हुई थी, ये सब बहुत अनन्य दादियां थी, बड़ी दादियां थी, लेकिन बाबा ने दीदी और दादी की जोड़ी बनाई और ऐसा बल भर दिया जो कैसे यज्ञ को आगे बढ़ाया, कैसे बाबा को साथ रख करके बाबा ने एकदम, जब दादियां कहेंगी बाबा आ जाएंगे। और इन दोनों दादियों ने बाबा को ऐसे अपने आर्डर में, अपने प्यार में बांध के रखा, जो जहां पर भी गुलजार दादी को बोल दें कि दादी अभी बाबा से पूछ के आओ या बाबा को बुला के ले आओ, कभी बाबा के कमरे में, कभी छोटे हाल में, कभी यहां, यहां तो बाद में बना है, मेडिटेशन हाल तो बाद में बना, हम लोग आ गए थे 71 में, तो 72 में जब मैं समर्पित हुआ तो बाबा को बहुत से स्थानों पर बुलाया, अलग अलग स्थान पर बुलाते थे, एक जगह नहीं। और भोग रखने की कोई सिस्टम नहीं थी, भोग तो जब ऑफिशियल बाबा आते थे कोई डेट पर तब भोग सामने आता था, ऐसे तो जब चाहिए तो दादी कहती थी जाओ बाबा से पूछो, बाबा को बुलाओ। तो जहां मेरा ऑफिस है ना इधर, यहां पर भी एक क्लासरूम बना हुआ था, यहां पर भी एक बार गुलजार दादी को बिठा दिया, बुलाया, अकेले में जब बात करनी होती थी, कोई पर्सनल पूछना होता था, कभी छोटे हाल में, कभी हिस्ट्री, अपने बाबा के कमरे में गद्दी पर गुलजार दादी को बिठा देते थे, बाबा आ जाते थे। और कभी कभी तो जब हम पहली बार आए हैं ना, तो कम से कम मैं समझता हूँ 20 मिनट 25 मिनट तक अकेले बाबा के सामने, कोई दूसरा नहीं, जो मिलाने वाली बहन होती थी वो भी वहां से हट जाती थी कि आप बातें करो बाबा से, जो कहना, छोटा परिवार था। और बाबा बहुत प्यार से एकदम दृष्टि देते, ऐसे सामने बिठा करके एक एक चीज पूछते, कैसे चल रहा है, कैसी स्थिति है, जैसे बच्चों से बात किया जाता है ऐसे ही। फिर बड़े प्यार से अपने हाथ से मुख में खिलाना पिलाना, वो दिन ही अलग थे। रात को 2 बजे 3 बजे तक बाबा बैठा है, बच्चे नहीं ज्यादा, बच्चे हम मधुबन वाले ही थोड़े बहुत हैं। तो ऐसे बाबा का यहाँ पर अलौकिक पार्ट इन्हीं दिनों, आज 52 इयर्स बाबा की जयंती, हम 52 स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो बाबा को 52 इयर्स अव्यक्त हुए हो गए। कैसे अव्यक्त रूप में बाबा ने बच्चों की पालना की है, कितनी वंडरफुल पालना की है, देखो आप, जो साकार में बाबा के महावाक्य चले हैं, उन सब साकार के महावाक्यों को दीदी दादी ने लक्ष्य रख करके कि इनको प्रैक्टिकल रूप देना ही है, और बाबा को बैकबोन बना लिया। जो कर्म योग की बात आई है, एक दो अनुभव हैं ऐसे कि बाबा इस समय एक तो कर्म के बीच में कंबाइंड है, दूसरा कर्म कराने वाले से करा रहे हैं, करावनहार हैं, और तीसरा मैं जो अपना पर्सनल अनुभव करता हूं, कंबाइंड के साथ साथ तो मेरे बैकबोन है। और बैकबोन ऐसे कराता है, परसों की जो मुरली बाबा की चली, 18 जनवरी की साकार मुरली चली, उसके बाद एक अव्यक्त मुरली थी छोटी सी, जिसमें वर्तमान समय की जो हालत है पूरे विश्व के अंदर, जो तनाव चारों ओर का है, उसका बहुत वर्णन अच्छे ढंग से आप लोगों ने अटेंशन अगर दिया हो तो, अव्यक्त बाबा की जो सवेरे की मुरली थी, साकार मुरली के साथ चली है 18 तारीख की, उसमें वर्तमान कमाऊं तो चिंतन, न कमाऊं तो चिंतन, चारों तरफ से टेंशन का वातावरण है, और इस समय की जनरेशन कैसी आएगी, उनको कैसे हैंडल करना है, सब लोग धारणाओं में चलेंगे, नियमों को पालन करेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अंत समय की आत्माएं जो आएंगी वो इतनी मजबूत नहीं होंगी, लेकिन स्नेही और सहयोगी होंगी, उनकी पालना कैसे करनी है। तो ये जब मुरली आप लोगों का विचार चला या नहीं चला, लेकिन ये जब चल गई क्लास के बीच में, उसके बाद मेरे पास फोन आने लगे कि मुरली किस डेट की है, क्योंकि इसमें डेट मैंने नहीं लिखी, और ये मुरली ऐसे अचानक कैसे आई, ये आज के समय के अनुसार आई। तो लंदन से फोन आया, फिर गुजरात से आने लगे, कई बहनों ने जब इस पर अटेंशन दिया कि पूरा ही दृश्य बाबा ने जैसे आज के समय का वर्णन किया है, तो मैंने कहा भाई मैं कोई इस समय के सीन को सामने रख करके मुरली नहीं निकालता, लेकिन मेरे को तो बाबा बैकबोन को सामने रख करके ऐसे लगता है पीछे से देख रहा है, और कंप्यूटर पर हाथ चलाता हूँ ऐसे उंगली कहीं कहीं बाबा रोक देता है, तो मैंने मुरली जानबूझ करके नहीं निकाली है, लेकिन बाबा ने निकलवाई होगी। उस समय 3-4 महीने पहले मुरली बनाते हैं, तैयार करते हैं, अभी हमारी मई अप्रैल की मुरली हमारे हाथ में है, क्योंकि 3-4 महीने पहले हमें पूरे विश्व को साथ लेके चलना होता है। तो अप्रैल में मुझे क्या मुरली चलानी है, कौन सी मुरली बाबा की चलनी चाहिए, उसकी सेटिंग अभी से होती है। तो जनवरी की मुरलियां भी शायद मैंने अक्टूबर नवंबर में ही तैयार कर ली थी, अक्टूबर के अंदर ही तैयार हुए थे। तो बाबा बैकबोन है, कर्म योगी की स्थिति यही है कि हमारे कर्म युक्ति युक्त होने चाहिए, ऐसे नहीं कर्म हम कर रहे हैं हम तो बाबा की याद में है, गलती हो गई ये हो गया। कई लोग कहते हैं ना, हम योग में बैठे थे, स्टेशन निकल गया, हमको पता ही नहीं चला, ये योग है क्या। आज आप भोजन बना रहे हैं, भोजन कहे हम तो योग में थे, वो जल गया मुझे पता नहीं चला। कभी कभी बच्चे भी यूज करते हैं बाबा को, ये बहुत अधिकार से यूज करते हैं, दिल का प्यार होता है बाबा से, अधिकार से यूज करते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं। परसों एक जगह पर एक बहन ने मुरली सुना रही थी, और छोटी बहन ने भोग बना रही थी, 18 तारीख का भोग बन रहा था। जब क्लास में भोग लगाने का समय आया तो एक बहन आके, जो बहन मुरली सुना रही थी, उसके कान में बोलती है, दीदी भोग बनाते बनाते हमारी एक छोटी बहन से भूल हो गई, उसने दूध डाला पहले और दूध के बाद उसमें दही डाल दिया, और दही डालने के कारण अभी क्या करूं, भोग लाऊं या न लाऊं बाबा के आगे, दूध में दही डालने की तो फट जाएगा ना सारा। अब वो बहन बाबा को कहती, बाबा क्या आज मेरा भोग आप स्वीकार नहीं करेंगे, जो सीट पर बैठी मुरली सुना रही थी, ऐसे कैसे होगा 18 जनवरी का दिन, अभी दूध तो और लाएंगे कहां से, जो था वो तो सब दही में मिल गया। कहती मैंने बाबा को बहुत अधिकार से बोला, बाबा कुछ भी हो जाए भोग तो मुझे खिलाना है, दही वाला ही खिलाना पड़े, भले अभी नया दूध कहां से आएगा, आप जाओ भंडारे में हमारी बहनों को गाइड करो कैसे बनाना है। अधिकार से जैसे बाबा से कहती, मैंने रू रियान की, और मेरे को भी इतने अधिकार से सुनाया उसने फोन पर, कि मैंने बाबा को बोला, बाबा आप जाओ भंडारे में, अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, भूल हो गई क्या किया जाए। कहते हो भोग बना करके ले आई चुपचाप, जो था रख दिया, भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद जितने विद्यार्थी जो भी आए थे क्लास में, 70 लोग थे कहते, सब ने भोग खाया, किसी को पता नहीं चला इसमें दही मिक्स है। सब ने महिमा की, बहुत अच्छा आज बना भोग, बहुत अच्छा बना है। तो कहती एक बड़ी बहन जो हमारी अनन्य थी वो बाद में आई, उसको बोला तुम पहले भोग खाओ। कहती क्यों पहले भोग खाना, पहले मुरली सुनाओ। कहते नहीं पहले भोग खा के देखो। कहती भोग उसने खाया, उसको भी पता नहीं चला इसमें दही है। बाबा ने जैसे कहती मेरी लाज रख ली, नहीं तो आज क्या होता था। जनवरी का भोग मेरे यहां नहीं लगता, मैंने क्या ऐसा काम किया, ऐसे ऐसे बोल रही थी। बाबा को समय पर अधिकार से यूज करना, ये कर्मयोग है। कई बार हम कहते हैं हम कर्मयोगी हैं, भूल हो गई। एक बार यहां क्या हुआ, मधुबन के अंदर एक भाई थे हमारे, दूध के भंडारे में सेवा देते थे। जल्दबाजी में दूध उबल गया, उबलने लगा, पिलाना दूध था, उसमें चीनी की जगह पर उसने चाय डाल दी। डालनी उसको चीनी का डब्बा था, चीनी के डब्बे एक जगह साथ में रखे थे दोनों डब्बे, चीनी की जगह पर उसने चाय डाल दी। और चाय डालते ही वो तो उबल गया, चाय बन गई। अब बेचारा डर गया, अभी दूध कैसे पिलाएंगे सबको, और पूरा तपेला ऐसा नहीं छोटा मोटा तपेला की चाय बन गई। वो डर तो गया, लेकिन दादी के पास पहुंचा। दादी मेरे से जल्दीबाजी में भूल हो गई, क्या हुआ? बोला दादी ऐसे हो गया मेरे से। बोला दादी कोई बात नहीं, चलो आज दादी सबको अपने हाथ से चाय पिलाएगी। दादी आई भंडारे के बीच में और कहती अनाउंस करो कि दादी आज ठंडी के कारण सबके लिए चाय बनवाई है दूध की जगह पर। कैसे पॉजिटिव, मना जरा भी गुस्सा नहीं किया, जरा भी ये नहीं बोला ऐसा तुम थोड़ा योग युक्त होके करता, भूल हो गई, कैसे हुई, तुमने योग ठीक नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना लाइट कर दिया। और फिर दादी खुद आके बैठ गई भंडारे में और सबको दूध की जगह सबको चाय पिलाई, सब संतुष्ट हो गए। ये हमारी दादियों की एक नेचर, माना कि इसको कर्मयोगी कहते। कर्म अगर हो भी गया कुछ ऐसा तो उसका ऐसा चिंतन न किया जाए जो वातावरण को खराब कर दे। वातावरण ठीक रहे, स्थिति हमारी ठीक रहे, उसको योग कहते हैं। स्थिति बिगड़ गई और हम कहते हैं हम तो योग में थे, स्थिति बिगड़ने नहीं देना। जहां कर्म और योग का बैलेंस है, कैसे कैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म किए, कहते हैं एक बार यहां गाय थी, मालूम है ना, मधुबन में गाय थी। ये जो भंडारा बना है ना, ये पुराना नया भंडारा, यहां पर गौशाला थी। और एक छोटा सा बच्चा, उस समय नाम बता देता हूं, आप लोग पुराने जानते हैं, शिव बालक, अभी दिल्ली पांडव भवन में रहता है, 12 साल का था, मधुबन में आ गया, माँ बाप के साथ ही रहने लगा। बाबा ने उसको कहा बच्चू तुम गाय संभालेगा, क्योंकि गौ संभालने वाला भाई कहीं छुट्टी पर चला गया था। बोला हाँ बाबा संभालूंगा, क्यों गांव से आया था। अब गाय संभालने लगा, गायों को बड़ा प्यार से चारा देना, ये करना। तो दूध निकालने की बारी आई, तब उसके तो हाथ बहुत छोटे थे और दूध निकालने की प्रैक्टिस भी कम होगी, तो जो 4-5 बाल्टी दूध निकलता था उसने मेहनत की थोड़ी बहुत, तो एक बाल्टी निकाल के ले आया। बाबा बड़ी महिमा किया, बच्चा बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत अच्छा संभाल सकता है गायों को। ये नहीं कहा 5 बाल्टी निकलता था तुम एक ही निकाला, नहीं, और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो। अब दूसरे दिन उसने जब प्रैक्टिस किया तो 2 बाल्टी निकाल दिया। 2 बाल्टी निकली तो छोटा तो था, बाल्टी भर के ला रहा था, ठोकर लग गई, और ठोकर लगी तो दोनों बाल्टी दूध बह गया, सारा गिर गया। अब वो तो डर गया एकदम, अब बाबा मुझे क्या कहेगा, बाबा के लिए दूध नहीं रहा, चाय के लिए दूध नहीं रहा। वो आया बाबा, बाबा बच्चों कितना निकाला आज। तो रोते हुए हंस कहता बाबा मैंने निकाला तो 2 बाल्टी, लेकिन मेरे से ठोकर लगी, गिर गया। कहाँ गिरा बच्चे, दिखाओ तो कहाँ गिरा। अब बाबा उसको उंगली पकड़ के वहां ले गया, देखे कहाँ गिरा। अरे बच्चे मैंने तो सुना बाबा कहता है सतयुग में दूध घी की नदियां बहेंगी, अरे यहाँ ही संगम पर बह रही दूध घी की नदियां। आज तो देख करके बाबा खुश हो गया कि संगम पर भी दूध की नदी बह सकती है। ऐसे बाबा कर्मयोगी थे। और एक कहानी सुनाता हूं। कहते हैं बाबा ने पूछा उस बच्चे से ये गाय का गोबर तुम क्या करता है? बोला बाबा पीछे डाल देता हूं बाहर कूड़ेदान में। बोला नहीं बच्चे, उस गोबर के लड्डू बनाएंगे। अब परेशान कि गोबर के लड्डू बाबा कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? अरे बच्चे चलो मैं बनाता हूं। और बाबा आए, गोबर के लड्डू बनाना शुरू किया, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। और बाबा खुद बना रहा था और उस बच्चे को कह रहा था जाओ तुम जाके सुखा के आओ। तो वो धूप में रख के आता था, फिर बाबा बना के उसको देता था। ऐसे गोबर को बाबा ने यूज करने की विधि बताई कि कैसे इसको सुखा करके फिर आग गोला बनाना, आग जलाना है। बाबा बना रहे थे, एक VIP आ गया। VIP कहने लगे हमको बाबा से मिलना है। तो बहने सोचे कि बाबा ये छोटा काम कर रहा है, देख के क्या सोचेगा। बहने मना किया, नहीं नहीं हमको बाबा से मिलना है, जैसे भी है जहां भी है। तो चला गया बाबा के सामने, तो उसको बाबा नहीं दिखाई दिया, कृष्ण जैसे खिलौनों से खेल रहा है ऐसे ऐसे। और वो एकदम बाबा के पैरों में झुक गया जाके, कि सिर्फ बाबा नहीं दिखाई दिया, श्री कृष्ण दिखाई दिया, उसको खेलते हुए साक्षात्कार करा दिया। बाबा कभी किसी कर्म को साधारण के साधारणता से यूज नहीं किया। कर्म हो, कोई भी कर्म हो, झाड़ू लगाए, धोबी घाट किया, ये गोले बनाए, लड्डू बनाए, सब किया, मिट्टी का काम भी किया, लेकिन इतनी योगयुक्त स्थिति थी, इतनी ऊंची स्थिति थी, जो उनको देख करके कोई को साक्षात्कार हो जाता। ये कर्मयोगी स्टेज है। तो कर्म के कई कहते हैं ये कर्म है ना, मैं साधारण कर्म है, छोटा कर्म है, इसलिए बाबा की याद इसमें कैसे रहेगी। लेकिन बाबा कहता बच्चे कर्म तो कोई भी हो, हाथों से काम करो और दिल से बाबा को याद करो, ये कर्म योग है। तो बाबा ने साकार में, दादियों ने साकार में सब प्रैक्टिकल करके दिखाया, हर संबंध से बाबा को यूज किया, साथ रखा, और उसके कारण वो कर्म योगी बन करके कर्मातीत बन गए। हम सब सोचते हैं कर्म योगी कैसे बनेंगे। कल बाबा ने परसों मुरली चलाई आकर के कि बच्चों का अमृत वेला तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो योग टूट जाता है, कर्म और योग अलग हो जाता है, इस पर अटेंशन दो। और उसके लिए बाबा ने कितनी मुरली, पूरी मुरली उसी पर फिर चल गई, लहर घूमी और पूरी मुरली उस पर चलाई कि बच्चे मन के दिनचर्या का, मन की स्थिति का टाइम टेबल बनाओ, जिस प्रकार का कर्म है उस प्रकार का सम्मान ले लो, उस समान के आधार से अगर कर्म करोगे तो कर्मयोग हो जाएगा। भिन्न भिन्न संबंध यूज करो, कभी बाप को साथी बना लो, कभी सखा को साथी बना लो, कभी साजन को साथी बना लो। लौकिक में तो अभ्यास बना हुआ है, लेकिन अलौकिक रीति से जो दिखाई नहीं देता उसको साथ बनाना, साथी बना लेना, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा अभ्यास अगर होता ना तो ऐसे लगता है जैसे बाबा तो ऐसे हर पल साथ है, अलग है ही नहीं। और संगम युग पर ये दिल के प्यार का सौदा है, अगर सच्चा दिल का प्यार है तो बाबा की याद भूलती नहीं है, कितना भी कुछ भी कर्म हो। कर्म हाथों से हो रहे हैं और कर्म दिया किसने है, कोई भी कर्म अगर आप कर रहे हैं चाहे अपनी प्रवृत्ति में है, संगम युग पर तो हम सब ने बाबा को अपने आप को अर्पित किया है बुद्धि से कि मैं बाबा आपका हूं, और जो कर्म है आपके लिए मैं कर रहा हूं, नई सृष्टि की स्थापना के लिए तन मन धन जो है वो सब उसी में सफल हो रहा है। इसलिए ये जब स्मृति रहती है कि बाबा ने ये सेवा मुझे दी है, ये नौकरी नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये बाबा की स्थापना में सहयोग के लिए मैं कर रहा हूं, स्थापना का सहयोग है, नई दुनिया की स्थापना में बच्चों का तन मन धन समय लगे उसके लिए कार्य मिले हैं, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर कमाई हो रही है तो भी बाबा के काम में लगेगी, सेवा में लगेगी, परिवार भी है तो बाबा का है, उसकी पालना हो रही है, इतना एक संबंध का जो रस है, प्यार है बाबा से, वही कर्म योग है। योग ऐसा नहीं करो कि काम हो रहा है और बुद्धि से ऊपर चले गए और फिर कर्म में कोई नुकसान हो जाए। बाबा कहता ये योग थोड़ी है, योग युक्त माना युक्ति युक्त, ये शब्द यूज देखो आप, अगर यथार्थ विधि पूर्वक हमारा योग है, कनेक्शन बाबा के साथ है, तो कर्म में कुशलता आ जाती है, योग्यता आ जाती है, बहुत युक्ति युक्त माना, युक्ति युक्त माना ऐसे चलाने वाला नहीं, यथार्थ, युक्ति युक्त का अर्थ है यथार्थ कर्म होता है। जो कोई भी कर्म यथार्थ अगर हो रहा है, माना बाबा का साथ है, याद है, कई बार बाबा जब घुमाने ले जाते थे ना, अगर किसी को थोड़ी भी चोट लग गई, ठोकर लग गई कहीं, तो बाबा कहते थे इसका योग ठीक नहीं है, क्यों चोट लगी, कहीं अलबेलापन, कहीं बुद्धि भटक रही होगी इसलिए लगी, बाबा की याद में होगा तो चोट नहीं लगेगी। तो बाबा ऐसे ऐसे युक्ति रच करके, आज इसकी टोली बंद कर दो, इसको ठोकर क्यों लगी, इसका योग ठीक नहीं था। माना बुद्धि होगा क्लीन है, क्लियर है, बाबा से अच्छा संबंध है, तो बाबा की टचिंग आती है। ऐसे बुद्धि को, ऐसे बाबा जिसे गाइड कर रहा है, वो हमारे साथ है, हर कर्म में सफलता नोंधी हुई है, समाई हुई है, कर्म कर लिया फिर कहें क्या करूं, मैंने सोचा नहीं था, हो गया, माना कर्म योग नहीं है। हम सब बाबा के बच्चे कर्म योगी बन करके बाबा को ऐसे साथ रखें। मैं तो हमेशा कहता हूं, जब आप अपने सेवा क्षेत्र पर जाओ, किसी भी सेवा पर, बाबा ने कहा बच्चे मुझे अपना साथी बना लो, और साथी बनाने का अच्छा तरीका ये है, एक है दिल से प्यार से हम बाबा को कहते हैं बाबा आप हमारे साथ हैं। स्थूल में बाबा ने सिखाया कि जब आप घर से निकलते हो तो एक मिनट बाबा के कमरे में ऐसे बाबा से दृष्टि लो, शक्ति लो, और बाबा से ऐसे रूप रिहान करो, बाबा इस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं, अभी आप मेरे साथ चलो, आप मुझे मदद करना, ये कार्य आपका है, ये आपके कार्य की सफलता होनी चाहिए। ऐसे बहुत युक्ति युक्त यथार्थ विधि पूर्वक बाबा को ऐसा साथी बना करके जाओ। और कई बाबा के बच्चों ने इस प्रकार के प्रयोग करके बहुत सफलता प्राप्त की है, कभी भी उनके अंदर नेगेटिव संकल्प नहीं आता कि इस कार्य के लिए मैं इस व्यक्ति के पास जा रहा हूं, पता नहीं ये करेगा या नहीं करेगा। उनके अंदर ये रहता है, अरे मेरे साथ बाबा है और बाबा का कार्य ये है, ये अवश्य करेगा। तो ये जो हमारी पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन की विधि है, यही यथार्थ योग है। हम सोच रहे हैं हमारे साथ बाबा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, लेकिन अंदर अंदर कह रहे हैं जिस व्यक्ति से मैं काम कराने जा रहा हूं ये काम ठीक नहीं करेगा, ये व्यक्ति पैसा लिए बिना नहीं करता, ये बहुत क्रोधी व्यक्ति है। तो हमारे जो विचार हैं, उन विचारों का प्रभाव उस आत्मा पर, सामने वाले पर पड़ जाता है, और जो करने चाहता वो भी नहीं करता फिर, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन हमने उसको पहुंचा दी। बाबा ने शुरू में जब बहनें विदेश गई हैं, शायद आपको मालूम होगा ये कहानी, जब पहला पहला ग्रुप बाबा ने भेजा, जिसमें हमारी शील इंदिरा दादी को खास भेजा संदेशी के हिसाब से, साथ में उषा बहन थी, रमेश भाई, उषा बहन, जगदीश भाई, और हमारी एक रोजी बहन थी मद्रास के अंदर चेन्नई में, तीन बहनें निर्मला दादी, निर्मला दीदी थी, चार बहनें और दो भाई, ये छह लोगों को भेजा। और एक ही डायरेक्शन, यही जो बताया ना, ये डायरेक्शन था कि कभी भी किसी सेवा पर निकलना तो बाबा का एक कमरा बनाओ पहले, जहां रहो वहां छोटा सा कमरा बना के बाबा का फोटो रखना, और जब निकलो तो बाबा से बात करके बाबा को साथ लेकर निकलना। तो कहते हैं एक बार कुछ अर्जेंट कहीं प्रोग्राम था और जल्दी जल्दी लेट हो रहे थे, विदेश के अंदर 5-10 मिनट भी लेट हो जाओ तो उसको बहुत गलत मानते हैं, तो जल्दी जल्दी में हम लोग निकल आए, चौथी पांचवी मंजिल पर हम लोग रहते थे ऊंचाई पर, और निकल आए, नीचे आए, फिर कोई चीज की याद आई कि ये चीज भूल गए, तो फिर ऊपर चढ़े, फिर बाबा के पास जाने की बजाय फिर वही चीज लेके फिर नीचे आए, फिर कोई चीज भूल गए, फिर ऊपर चढ़े, 2-3 बार चढ़े और लेट में लेट होते गए। फिर संदेशी को बोला, शील दादी को बाबा से पूछो ऐसा क्यों हो रहा है, यूज तो किया संदेशियों को बहुत। तो संदेशी गई बाबा से, बोली बाबा ने सीधा ही कह दिया, बच्चे आज्ञा को मानते नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है। बाबा ने आज्ञा दी थी कि जब भी कमरे से घर से निकलो तो बाबा से मिलके छुट्टी लेके निकलना, इसलिए बाबा इनको प्रैक्टिस करा रहा है, जाने नहीं देता है। तो बाबा हमारे सदा साथ साथ है, संगम युग पर इसको यूज करो, यूज नहीं करते, कहते क्या करूं बाबा तो निराकार है, वो तो परम नाम में रहता है या अभी अव्यक्त वतन में है। लेकिन हम सब बाबा के बच्चों का इतना जिगरी बाबा से प्यार है जो बाबा कहता मैं बच्चों के बिना रह ही नहीं सकता हूं। लेकिन ऐसा प्यार से संबंध हो कि जब बाबा को प्यार से कहो बाबा आपकी यहां आवश्यकता है, बाबा अपने आप हाजिर हो जाएगा। तो एक विधि बाबा ने ये बताई कि जब कहीं जाओ तो बाबा को साथ लेके जाओ, लेकिन जब कार्य पूरा हो जाता है तब भूल जाते, सफलता मिल गई भूल गए। तो एक भाई ने मेरे को अभी बताया आकर के कि भाई जी ये भी बताओ कि जब वापस आओ तो बाबा को थैंक्स देने के लिए 2 मिनट बाबा कमरे में जाओ, बाबा आपका शुक्रिया आपने सब काम बहुत अच्छा करा दिया। थैंक्स देना ही भूल जाते, काम हो गया भूल गए। तो बाबा कहते तो स्वार्थी बच्चे हो गए, तुमको स्वार्थी नहीं बनना है, कर्म करो, कर्म में बाबा को ऐसा साथी बना लो जो हर कर्म हो सफलता मिले या कुछ भी नीचे ऊपर भी हो आकर के बाबा को सुनाओ जरूर। जैसे माँ बाप बड़े बैठे होते घर में, बच्चे आज्ञाकारी हैं, सपूत हैं, जो भी होता है नीचे ऊपर सब आकर के माँ बाप को बता देते, हल्के हो जाते। ऐसे ही बाबा के साथ संगम पर हर संबंध में इतना समीपता का अनुभव हो, बाबा समय पर समय मूल्यां चला रहे हैं कि बच्चे हर संबंध से मुझे यूज करो। अभी परसों नरसों बनी चली थी ना मुरली, सब संबंधों की कैसे बाबा को याद करो संडे को। तो हम सब बाबा के बच्चे ऐसे सर्व संबंधों से, कभी मात पिता के रूप में अमृत वेले आंख खुलती है, मैं एक छोटा बच्चा हूं, बच्चा बन करके बाबा से अच्छी रूह रिहान करो, बाबा से शक्ति लो, सकाश लो, वरदान लो, सब बाबा से जो चाहिए ले लो। कहता ना मैं भोलानाथ हूं, जैसे भी मनाना चाहो, जैसे भी रिझाना चाहो, जो कुछ प्राप्ति करना चाहो, मैं सब देने के लिए दाता बन करके आता हूं। तो ऐसे सवेरे सवेरे बाबा से बच्चा बन करके ले लो, फिर थोड़ा सा बड़े हुए स्कूल आए, बाबा से पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा मुझे कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, पढ़ाई का नशा तो मैं समझता हूँ सबको रहता होगा। कितना बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, घर का ज्ञान दिया, जो आज तक मनुष्य आत्माएं ज्ञान दे रही थी सुना रही थी, लेकिन कितना मिक्स ज्ञान था, न आत्मा का ज्ञान, न परमात्मा का ज्ञान, न घर का ज्ञान किसी के पास दुनिया के अंदर। अभी तक भी आप कोर्स करा दो उसके बाद बोलो, फिर बोलेंगे आत्मा परमात्मा का अंश है, हम जाकर के ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, ब्रह्म ही भगवान है। आप कोर्स करा के पूछ लो उनसे, वही बताएंगे जो उनके अंदर भरा हुआ है। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक जगह क्लास करा के पूरा क्लास वीडियो बैठा था सामने सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुना, जब उसको बोला थोड़ा सा 2 मिनट बोलो तो हम वही रट जो उसको रटा हुआ था, इतना सुनाया उसको कुछ नहीं बुद्धि में बैठा। वही कहता है कि हम आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाएंगी, ब्रह्म घर में समा जाएंगी। तो बहन कहती भाई जी अभी सुना क्या आपने, ब्रह्म घर है, ब्रह्म निवास स्थान है, ब्रह्म भगवान नहीं है। अब बाबा ने हम सबको कितना स्पष्ट आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, घर का ज्ञान, पुनर्जन्म का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, मैं समझता हूं इतना प्यार से बच्चे बच्चे कह करके, हो सकता बच्चे बच्चे कहा इसलिए साधारण समझते हो, लेकिन इतना सरल और स्पष्ट रीति से सुनाया है बताया है जो कोई मूंझ नहीं है, कहीं भी उलझन नहीं है, कहीं भी भटक नहीं सकती आत्मा, चाहे वो ज्ञान छोड़ के भी चली जाए लेकिन दूसरे ज्ञान में उसको निश्चय नहीं होगा। बाबा ने इतना स्पष्ट सब बातें सुनाई हैं। तो टीचर के सामने ऐसे बनो, कभी कभी मेरे से कोई पूछता है आपको सबसे अच्छा संबंध कौन सा लगता है बाबा के साथ, कौन सा लगता है, मैं कहता हूं मेरा टीचर अभी भी है, और इतना अच्छा टीचर है, कोई पूछे कितना पढ़े हो, हम कहते हैं अभी भाई पढ़ ही रहे हैं, पढ़ाई पूरी थोड़ी हुई है, अभी चल रही है पढ़ाई, इतने सालों से पढ़ ही रहे हैं, और जब तक जीना है तब तक पढ़ना ही है, एम ऑब्जेक्ट सामने है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, पढ़ना ही है, पढ़ते रहेंगे और बाबा पढ़ाता रहेगा, वो थकता नहीं तो हम क्यों थके। तो बाबा ने टीचर बन करके जो हम बच्चों को इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई है, इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, हम सबकी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, अलग अलग उत्तर आएंगे, नरसिंह नारायण बनने का, हमारी सबकी पढ़ाई का एक लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न, 16 कलाओं से संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। ये हम सब की इस संगम की पढ़ाई का लक्ष्य है। और जो हम पढ़ रहे हैं इससे जब तक सर्व गुणों से संपन्न आत्मा नहीं बनी है, जब तक वो संपूर्ण निर्विकारी नहीं बनी है, जब तक उसके अंदर सर्व कलाएं नहीं आई हैं, तब तक हम सबको पढ़ना है। अभी तो आए नहीं है ना, सब आ जाएंगे तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, आत्मा कर्मातीत बन जाएगी। तो ये जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को, पढ़ाया तो मुरली ही है और कोई नई पढ़ाई तो नहीं पढ़ाई, और चार सब्जेक्ट ही पढ़ाई है, लेकिन चारों सब्जेक्ट की कितनी गहराई है। कभी कभी मैं इस पर क्लास कराए हैं, आप लोग सुनते होंगे कि चारों सब्जेक्ट की जो गहराई है उसको यथार्थ समझना, जब तक उस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, जो उसका एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक वो पढ़ाई जीवन में आई नहीं है। हम दूसरों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हम बाबा की मुरली सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं, दूसरों को बहुत अच्छी तरह से करा देते हैं, उनको बाबा का बच्चा बना लेते हैं, लेकिन बाबा को जो ज्ञानी तू आत्मा चाहिए, जो ज्ञानी तू आत्माएं भगवान को प्यारी हैं, क्या वो ज्ञान मेरे स्वरूप में उतरा है? अगर ज्ञान स्वरूप में उतरा है तो उसकी सबसे पहली निशानी कौन सी होगी? अगर ज्ञान स्वरूप में है तो क्या स्थित प्रज्ञ जी, कोई पीछे हाथ उठा के बोलो, सुनाई नहीं। अगर ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो वो निर्बंधन होगी, बंधन नहीं रहेंगे, क्योंकि ज्ञान किस लिए बाबा ने दिया है? बंधन मुक्त बनाने के लिए दिया है। संगम युग पर इस ज्ञान से आत्मा बंधनों को काट रही है, योग से आत्मा सतोप्रधान बनती है, योग आत्मा को पावन बनाता है, उसकी मैल निकालता है। लेकिन ज्ञान को अगर यथार्थ समझा है कि अब घर जाने का समय है, सब कुछ समेटने का समय है, हम आत्माएं खेल खेलते खेलते अंत में पहुंच गई हैं, अब जितना हमने हिसाब किताब बनाया था वो सब अभी चुक्त होने का समय है, अब नया कोई भी बंधन क्रिएट न हो, ज्ञान ये कहता है। और ज्ञानी तो आत्मा अगर नया बंधन बना रही है किसी तरह से भी, माना उसने ज्ञान को समझा नहीं है। नया बंधन तो समझ रहे हो ना कैसे बन रहे हैं, किसी के ऊपर प्रभावित हो गए, बड़ा अच्छा है, बड़ा स्नेही है, बड़ा सहयोगी है, बहुत अच्छा मददगार है। आत्मा कहीं न कहीं अटक रही है, लटक रही है किसी देहधारी के पीछे, जैसे इसके बिना चलेगा नहीं घर, इसके बिना यज्ञ नहीं चलेगा। उस आत्मा के ऊपर इतना प्रभाव, इतना झुकाव, इतना लगाव हो जाता है, बंधन क्रिएट हो जाते, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनसे लेन देन करना, उनसे ही सब चर्चा करना है, तो सब अपने हैं, किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर आकर्षित है, माना उसका बंधन बन रहा है। बन रहा है तो बोझ बढ़ता जाएगा, योग नहीं लगेगा, खींचेंगे, योग में बैठेंगे वो आत्मा अपनी तरफ खींच लेगी, ये बंधन की निशानी। और बंधन कट रहे हैं तो एकदम लाइट हल्का एकदम उड़ेगा, संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे। ये बंधन कटे हैं तो हम बैठेंगे योग में ऐसे बाबा की याद, बाबा कहेंगे और बाबा वतन में बुला लेगा। योग में अगर मेहनत लगेगी, लग रही है, तो चेक करना कहीं ना कहीं बंधन अभी तक रहे हुए हैं या बन रहे हैं। हम सबको न किसी भी आत्मा पर प्रभावित होना है, न किसी आत्मा से नफरत रखनी, घृणा रखनी है, सबका अपना अपना पार्ट है। जब ये एक भावना रहेगी, नहीं तो नफरत वाले, घृणा वाले भी आत्मा को खींचते हैं अपनी तरफ, कोई भी बात होगी वो सामने भी आ जाएगा तो उसके प्रति कितने संकल्प विकल्प चल जाते। इसलिए बाबा कहता है ना काहो से दोस्ती, ना काहो से वैर, सब बाबा के बच्चे, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर ज्ञान जीवन में है तो कर्म बंधन नहीं बनेंगे। कर्म करना जरूर है, लेकिन अगर कर्म में कर्तापन का भान आ गया, मैंने किया, मैं करता हूं, अब मैं नहीं करता तो कौन करता यज्ञ का, ये भी एक बंधन क्रिएट होता है। कर्म योगी आत्मा कर्म कर रही है लेकिन कर्म बंधन में नहीं बंधती। अगर बंधन में बंध रही माना उसके जीवन में ज्ञान नहीं है, ज्ञान सिर्फ वर्णन तक है, जीवन में नहीं है। तो कर्म योगी अगर हम हैं तो सबसे पहले हम ये देखें कर्म भी बंधन तो नहीं बना रहा है, सेवाएं भी बंधन बना रही, नया नया बंधन शुरू हो जाता सेवाओं में। लौकिक बंधन तोड़ दिए, कर्म बंधन जो महसूस हो रहे थे देह के संबंधों के उनसे हमने किनारा किया, सेवाएं हमें बांध रही हैं। सेवा नहीं मिलती है तो खुशी नहीं रहती है, कोई सेवा इधर उधर हो जाती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाबा कहता है लोहे की जंजीर काट दी, सोने की जंजीर बांध ली। सेवाएं भी अपने बंधन में न बांधे। कर्म योगी आत्मा कर्म किया न्यारी हो गई, कर्म बंधन नहीं बनाएगा। तो ज्ञान अगर स्वरूप में है तो किसी भी कर्म किसी भी सेवा में हम बंधेंगे नहीं। ठीक है सेवा आई है कर लिया है, सेवा की जवाबदारी बाबा ने दी, यथार्थ करेंगे युक्ति युक्त करेंगे, लेकिन इसके बिना हम नहीं रह सकते, सेवा मुझे चाहिए ही, वो बंधन है। तो ज्ञानी तू आत्मा अगर ज्ञान को स्वरूप में लाई है तो भी बंधन कटने चाहिए, हल्की एकदम लाइट। योग है तो आत्मा एकदम प्योर होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी, संस्कारों में सत्व प्रधानता आती जाएगी, उसकी प्योरिटी की पर्सनैलिटी बढ़ती जाएगी और साथ साथ उसका ओरा जो है आभा मंडल है वो सेवा शुरू कर देगा। बोलेगा कम लेकिन उसके वाइब्रेशन बहुत अच्छी सेवा करते हैं, इतनी अच्छी सेवा। अभी दादियों को देखो, जानकी दादी ने बोलना कम किया, उनके वाइब्रेशन खींचते थे, जहां भी गई लास्ट दिनों में हजारों की सभा इकट्ठी हो जाती थी दादी को देखने के लिए, दादी से मिलने के लिए, दृष्टि लेने के लिए। सुनाती क्या थी, मैं कौन मेरा कौन, दो चार शब्दों में पूरे ज्ञान का सार सुना देती, लेकिन उनकी जो ओरा था वो आभा मंडल था, जो योग युक्त स्थिति से उन्होंने बनाया हुआ था, वो आत्माओं को चुंबक की तरह खींचता था। देखा है हम सब ने दादियों को कैसी स्थिति बना करके कर्मयोगी बनते बनते वो कर्मातीत बन गई, कर्म बंधन से मुक्त हो गई, आत्मा सत्व प्रधान बन गई। जैसे रियल गोल्ड होता है तो रियल गोल्ड की निशानी मोल्ड हो जाता है, कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। इन संस्कारों को देखो, दादियों के संस्कारों को ऐसी मोल्ड हो जाते हैं, आप कहीं बिठा दो, कुछ भी खिला दो, कहां भी सुला दो, कभी भी ये नहीं कहा होगा ये ठीक नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसके साथ मैं नहीं रह सकती हूं, मोल्ड करने की एक नेचर हो गई। रियल गोल्ड आत्मा जब बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र बन गई, वो रियल बन गई, तो उसमें एकदम मोल्ड करने की शक्ति, अपने आप को एडजस्ट करने की शक्ति आ गई। प्योरिटी की निशानी यही है। एक बार बाबा की अव्यक्त मुरली चली है विदेशियों के साथ, अगर आप पवित्र स्वच्छ बनते जा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इस वातावरण में अपने को एडजस्ट नहीं कर सकता हूं, इस व्यक्ति के संस्कारों के साथ मैं मिलकर नहीं चल सकता हूं। आत्मा प्योर है, कैसी भी कोई आती है। हमेशा एक बात याद रखना, हमारी मनोहर दादी को बाबा एक नाम देता था, बहुत प्यार से कहता था, पुरानी बहनों को याद होगा क्या कहता था, आलू मिनिस्टर। आलू मिनिस्टर समझा क्या कहता, क्यों कहता था, आलू जो है ना सारी सब्जियों में मिक्स हो जाती, कहीं भी डाल दो आप सेट हो जाएगी। तो बाबा हमेशा मनोहर दादी को कहता था, ये मेरी बच्ची जो है ना ये आलू मिनिस्टर है, हर जगह पर कोई भी सेवा हो, कोई भी साथी हो, कैसी भी स्थिति हो। एक बार हम उनके साथ सफर में गए टूर पर कर्नाटक साइड में, भाग बहन हम और मनोहर दादी तीन ही जने थे। दादी को न एसी के कमरे चाहिए, न एसी का ट्रेन का डब्बा चाहिए, ट्रेन में ही सफर था हमारा पूरा। इतनी मिलनसार, इतनी रमणीकता से हंसाना बहलाना बैठना क्लास कराना सबके साथ मिलना, जो सोने को मिले जो जहां खाने को मिले। बहुत दिन की पहले की बात सुना रहा हूं, ये उस समय कहां साधन थे, छोटे छोटे सेंटर्स, छोटे छोटी सभाएं, कोई पब्लिक बड़े प्रोग्राम नहीं। लेकिन हम लोग गए थे ऐसे तीनों जने, कहा दादी तो सचमुच वालू मिनिस्टर है, जहां चाहिए वहां एडजस्ट हो जाती, जैसे चाहिए उसे सुला दो उनको, जैसे जहां रखना रख लो। तो ये जो नेचर है, मैं समझता हूँ जो रियल आत्मा प्योर बनती जाती है कर्म करते योग में रह करके, वो इतनी अपने आप को सरल नेचर की बना लेती है। वो सरल नेचर नहीं जो माया आ जाए, लेकिन वो सरल नेचर जो हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो ऐसे हम सबको देखना चाहिए कि आत्मा की योग युक्त स्थिति से कितनी सत्व प्रधानता आई है और कैसे जीवन में दिव्य गुण आते जा रहे हैं। प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना बाबा की पढ़ाई जीवन में आती जाती है, वो दिव्य गुण अपने आप चेहरे से, चलन से, बोल से लोगों को अनुभव होने लगते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। नेचुरल जब आत्मा योग युक्त बन गई तो उसकी धारणाएं कितनी अच्छी होंगी। धारणाएं क्या हैं? पता चलता है ना, बोलता कैसे है, चलता कैसे है, बात कैसे करता है, कर्म कैसे करता है। जिसके अंदर सब दिव्य गुण है उसकी अलौकिक चलन हो जाती है। अलौकिक चलन में सब दिव्य गुण दिखाई देते हैं। तो चौथी सब्जेक्ट जो है धर्म की धारणा की, धर्म धारणा माना धर्म। तो धर्म में तीन चीजें ही हैं। हमारा जो धर्म है शांति है, पवित्रता है और प्रेम है। अगर ये तीनों गुण हमारे जीवन से झलक रहे हैं, माना मैंने धारणा को अपने जीवन में धारण कर लिया है। सब गुण अपने आप इसके आधार से आ जाते हैं। प्रेम की मूर्त है आत्मा, पवित्र स्वरूप है आत्मा, कोई भी बातें आ रही हैं वो शांत स्वरूप है, हलचल में नहीं आती है। ये हमारा वास्तविक धर्म है। हम ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो देह के धर्म थे, आत्मा के स्वधर्म को पहचान करके उसमें स्थित हैं। कर्म कर रहे हैं, कर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर कोई आत्मा ये कहे कि मैं कर्म त्याग करके योग करूं, बाबा कहता है कर्म त्याग नहीं सकते, कर्म संन्यास है ही नहीं तुम्हारा, कर्म योग है, कर्म में योग है। कोई भी कर्म करो उसमें योग युक्त स्थिति है, बाबा की याद है, स्नेह है, शक्तियां हैं, कर्तापन का भान नहीं है। अगर कर्तापन का भान माना मैंपन आता है, माना वो कर्म योगी नहीं है। कितना सारा कार्य बाबा ने किया, दादियों ने किया, कभी कोई उनकी महिमा किया हो अगर आप लोगों ने, ऐसे आंख दिखाते थे मेरी महिमा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया, करा मनार बाबा करा, मैंने क्या किया। मैं एक दिन की बात सुनाता हूँ, शायद आप लोग सुना हो। दादी जी बैठी थी ऐसे कमरे में, वहां नीचे शांतिवन में, दो तीन साल से यहां नहीं आई थी ऊपर लास्ट दिनों में, और मैं तो रोज आता जाता था, अप डाउन करता था। तो एक दिन बैठा था, पहले बोलती है तुम रोज ऊपर क्यों जाता है। हमने कहा दादी यहां पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं है सबके लिए, तो हम लोग शाम को जाते हैं, इतने टाइम आते हैं, सुबह उठ करके आ जाते हैं नीचे। कहते जा तुमको क्या चाहिए, सहयोग क्या चाहिए, क्या तकलीफ होती है। तो मैंने बड़ी रमणीकता से कहा दादी दो चीजों की तकलीफ होती। बोली बोलो कोई तकलीफ है तो। दादी यहाँ योग लगाने के लिए कहीं जगह नहीं है। कहती अरे इतने बड़े बड़े बाबा के कमरे बनवाए हैं, योग लगाने की जगह नहीं है। हमने कहा दादी आप एक दिन चलो तो देखो कैसे योग होता है यहाँ। कहती क्या होता है। बाबा के कमरे में जाते हैं ना, बैठते हैं पांच मिनट, माताएं उठती हैं, अच्छा उठेंगी, भंडारी के पास जाएंगी, पैसा डालेंगी, फिर आएंगी, फिर निकल जाएंगी। कोई पांच मिनट भी एकाग्र होकर के नहीं बैठता है, ऐसा योग चलता है यहाँ शांतिवन में। मैंने ऐसे बोल दिया रमणीकता से। कहती अच्छा ऐसे होता है क्या। हमने कहा कोई आधा घंटा योग नहीं करता बैठ करके। तो अच्छा और क्या होता है। हमने कहा जब डाइनिंग में जाता हूं ना तो वीआईपी खड़े हों और हम खा रहे हों तो हमको थोड़ा लगता है कि ये बड़े भाई आए हैं, सब आए हैं बाहर से और मधुबन वाले बैठ के खाना खा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है वो। और अगर थोड़ा लेट जाते हैं तो खाना उठ जाता है, खाना ही नहीं होता वहां, इसलिए अच्छा है इससे तो हम ऊपर जाते हैं अपना आराम से रहते हैं, खाना खा करके आराम से आ जाते सुबह। तो अच्छा दो चीजों की तकलीफ, इसलिए रोज जाते आते हो। अच्छा लाओ मैं फोन लाओ मैं बात करती हूँ तुमको, ये दोनों से एलिवेशन दिलवा देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं दादी फोन से काम नहीं चलेगा, क्या करूं। ने कहा ऐसा करो आप एक साइन कर दो। मैं दो चार लाइन लिखी, हमने कहा इस पर लिख दो बीकेपी, दादी की साइन बीकेपी थी लास्ट, प्रकाश मणि का पी लिख देते थे। लेटर लिखा और लेटर लिख के कॉपी कर दिया, सब काम अपने आप हो गया, दोनों चीजें हमको मिल गई एलिवेशन। अब बोलो यही रहना है। ठीक है, रहने लगे साथ में शांतिवन में। कुछ दिन के बाद फिर मैं एक दो चार बार ऐसे आना जाना किया, फिर ऐसे बैठी थी, कहती है अच्छा तुम ऊपर हो क्या है, ज्ञान सरोवर में सब ठीक है? तो मैंने कहा हाँ दादी ठीक है। पांडव भवन में सब पूछती गई, एक एक चीज याद तो सब था, मेमोरी बहुत अच्छी थी। तो बाद में बोलती अच्छा सब कैसे ठीक चल रहा है, मैं तो जाती नहीं हूं और आप लोग सब नीचे रहते हो, कैसे सब ठीक चलता है? मैं दादी आपके शुभ संकल्प से सब ठीक चलता है, आपके जो अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना, भावनाएं हैं, उस भावनाओं से बहुत अच्छा चलता है सब। तो मुझे ऐसे कहते मेरी भावनाओं से चलता है? अरे मुट्ठा ऐसे होती, तुमको पता है बाबा की दृष्टि से, बाबा की भावनाओं से चलता है, हम लोगों को थोड़ी कुछ करना है, बाबा चला रहा है सब। मैं इतना निमित्त भाव, इतना निर्माण भाव, कभी अपनी महिमा भी स्वीकार नहीं की कि मेरी शुभ भावनाओं से यज्ञ चल रहा है। भले मैं बोल नहीं रही, लेकिन योग की युक्त स्थिति, पवित्र भावनाएं इन दादियों के, उससे तो यज्ञ चला, इतना आगे बढ़ा है। लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार नहीं किया कि मेरी भावनाओं से चल रहा है, कितना बड़ा त्याग है ये। इसको कहते कर्मयोगी स्थिति, बाबा के ऊपर इतना समर्पित, करण करावन हार बाबा है और वो सारे यज्ञ को चला रहा है, उसके सब बच्चे हैं, वो इसकी पालना कर रहे हैं। आज कोई कहे भाई हम अगर मुरली नहीं भेजेंगे तो इतना बड़ा परिवार कैसे चलेगा, हम पॉइंट्स नहीं भेजे, अरे बाबा करण करावन हार है, अगर मैंने कुछ नखरे किया तो दूसरे से करा देगा। उसका कार्य है, उसके बच्चे हैं, उसको पालना करनी है, उसका परिवार है। निमित्त अगर कोई को बना लिया और उसने अपना हाजी करके भाग्य बना लिया तो तकदीरवान है, भाग्यवान है, और नहीं बनाया तो भगवान का काम रुकेगा क्या? उसका कार्य तो हुआ ना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसलिए हम सब बाबा को इतना साक्षी होकर के, साथी बना करके रहते हैं तो करण करावन हार प्रभु की लीला है। और जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक उस यज्ञ की संभाल, इस यज्ञ को आगे बढ़ाना, उसको संभालना, हर एक को भासना और पालना देना, ये बाबा का बहुत गुप्त कार्य है। भले अव्यक्त रूप में आना बंद कर दिया, लेकिन कई बाबा के बच्चे ऐसे आते हैं, आते ही अनुभव करते हैं कि बाबा यहाँ पर है, अभी हाजिरा हजूर है, कहीं गया नहीं है। तो हम सब उस अनुभूतियों को देख के बढ़ाएं। कर्म करो, कर्म के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन कर्म ऐसे करो जैसे कराने वाला करा रहा है, हर संबंध में साथ है, कंबाइंड है। और कई बार कहता है बच्चे अगर तुम कमजोर भी हो ना, तुम्हारा साथी कौन है? हजार भुजाओं वाला तुम्हारे साथ है संगम युग पर, और वो बच्चों के साथ रहे तो फिर और क्या चाहिए। तो कोई भी कर्म हो, साधारण कर्म कुछ नहीं होते, चाहे जिस प्रकार का कर्म हो, बाबा को ऐसे साथी बना करके। बाबा को ज्यादा स्थान नहीं लेता, जैसे आत्मा प्रकृति के अंदर है ऐसे बाबा को बाजू में बिठा के अनुभव करो। संग का रंग लगना चाहिए। बाबागढ़ शांति का सागर है, बाबा घर प्यार का सागर है, सुख का सागर है। और हम कहते हैं हम बाबा की याद में रह करके कर्म कर रहे हैं, वो मेरे साथ है, तो मन कभी भी अशांत हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। साथ है अगर तो उसके संग का रंग लगना चाहिए, वो शांति का प्रवाह, वो पवित्रता का प्रवाह, वो वाणी में भी इतनी मधुरता, इतनी सरलता दिखाई देगी। अगर बाबा साथ है तो कर्म में कुशलता अपने आप आ जाए। करावन हार करा रहा है, ये निमित्त कर्म इंद्रियों से हम कर रहे हैं, किया और हल्के हो गए, बाबा जवाबदार है। बाबा कहता है अगर मान लो तुम मेरी श्रीमत प्रमाण कोई कर्म कर रहे हो, कर्म गलत हो गया, तो उसकी जवाबदारी मैं ले लूंगा। ब्रह्मा बाबा के लिए भी आश्वासन यही दिया। और निमित्त आत्माएं भी अगर कोई ऐसा कर्म करती है और श्रीमत अनुसार कर रही है और श्रीमत के कारण कोई गलती हो गई तो बाबा जवाबदार। इसलिए हम सब इतना समर्पित बुद्धि से बाबा को अपना साथी बना करके, कर्मयोगी बन करके कर्म करें। और कर्म के बंधन में अगर नहीं बंध रहे हैं तो कर्मातीत स्थिति कर्मयोग ही बना देगा। कर्म छोड़ करके कोई 8 घंटा 10 घंटा हमें बैठ करके योग करने की जरूरत नहीं है, कर्मयोगी स्थिति है। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए हम बैठते हैं। अभी सब ने इस तपस्या मास के अंदर 4 घंटे 8 घंटे अच्छी तपस्या की है, बैठ करके की है, ये हमारी स्थिति बनाने के लिए ठीक है। लेकिन कर्म त्याग करके योग में बैठ जाना, सेवाएं छोड़ देना, बाबा कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। कर्म करते एकदम बिल्कुल बाबा को साथी बना लो, करण करावनहार करा रहा है, हम तो खेल कर रहे हैं, ये खेल चल रहा है। कठपुतली का खेल देखा है, कठपुतलियों को नचाने वाला पीछे है, कितना अच्छा डांस करती हैं, हम सबको बाबा डांस करा रहा है, ऐसे लगता है सचमुच वो नचा रहा है, हम लोग नाच रहे हैं, बस इतना अच्छा संबंध है। यही कर्मयोग है, कर्मयोग अलग नहीं है, कोई ऐसे बैठ करके कर्म में ऐसे बीच बीच में ऐसे आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। कोई लोग कोई ऐसे कर रहे हैं, आंख बंद कर लेंगे, अभी ऑफिस में बैठे हो, अब आंख बंद करके बैठे हो तो क्या होगा। बाबा एक बार रमणीक मुरली चलाई, अगर दुकान में बैठे हो योग करने लगे आंख बंद करके, और चोरी हो जाएगी, सारा सामान उठा के ले जाएगा। इसको कर्मयोग नहीं कहते हैं। बुद्धि से बाबा को याद करना, प्यार से बाबा से बातें करनी है, साथ रखना है, कर्म कर रहे हैं उसको थोड़ी पता इसके साथ कौन है। निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, बाबा करण करावनहार है, काम हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हमको तो लगता है हमारे साथ है, हम डबल हैं, अकेले हैं ही नहीं, और सामने वाला समझता है अकेले हैं। तो इतनी निर्भय स्थिति, निश्चिंत स्थिति बन जाए तो बाबा अगर साथी है, हम उसको साथ रख करके करते हैं तो बहुत हल्कापन है, निश्चिंत है, निर्बंधन है, कोई कर्म बंधन में नहीं बांधता, आत्मा अपने आप संपन्नता की ओर आगे बढ़ती जाती है। तो सभी ऐसे कर्मयोगी बन करके रहना, बाबा को हर संबंध से साथ रखो, कभी कंबाइंड अनुभव करो, कभी बैकबोन के अनुभव में साथ में रहो, एकदम ऐसे लगे जैसे बाबा सर्व संबंधों से, माता पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, स्वामी है, साजन भी है, बच्चा भी बन जाता है, दोस्त भी बन जाता है, जब चाहिए जिस चीज की आवश्यकता है बाबा आ जाओ, यूज करो बाबा को। करते हो ना सभी, ऐसे बाबा को यूज करो। अभी संगम पर नहीं करेंगे तो कब करेंगे, फिर तो चला जाएगा। पूरे कल्प में भाग्य नहीं मिलता जो हम सबको इस समय मिला है, हम तो यूज कर रहे हैं बाबा को ऐसे ही। घर में लौकिक में भी मैंने बाबा को बोला, अभी तुम कुलदीपक बन के बैठ, मैं अकेला हूं ना, परिवार में बहुत बंधन डालते थे हमको, कौन कुलदीपक बनेगा, आपको क्या हो गया, आप तीन पाप के बच्चे हो, चिंता नहीं करो, कुलदीपक हमारा बाबा है। और बाबा आज तक इतना अच्छा घर में बैठा है, देखो आप जाकर के घर मंदिर बना हुआ है, आश्रम जैसी व्यवस्थाएं हैं, घर में हमारा लौकिक कोई नहीं, अलौकिक बाबा बैठा है बेटा बन करके, जो खेती से निकलता है सब बाबा के घर में आता है, और घर बाबा संभाल रहा है। निश्चय अगर है तो बाबा हर संबंध से साथ निभाता है, इसलिए सब बाबा के बच्चे संगम पर उसको अच्छी तरह से पहचान करके यूज कर लो, ठीक है। तो अभी हम आधा घंटा योग करेंगे 7:30 तक, सभी बाबा के स्नेह में समाने का अनुभव करना।
हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान
सभी अपने अकाल तख्त पर अपने चमकते हुए सितारे का अनुभव करो। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न लाइट माइट स्वरूप भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक दिव्य सितारा हूं। बाबा को इसी स्वरूप में देखते, उनके साथ कंबाइंड होकर बैठो, अनुभव करो वो सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ रूप में ज्योतिर्बिंदु, सर्वगुणों का सिंधु, मेरा बाबा मेरे साथ साथ कंबाइंड है। उनकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा को समान बना रही हैं। मास्टर शांति का सागर, मास्टर पवित्रता का सागर, बाबा के साथ उनके समान स्वरूप में बैठकर चारों ओर इन शक्तियों को फैलाओ। हम सभी अपने फरिश्ते स्वरूप से एक सुंदर लाइट के शरीर से अपने लाइट के वतन में बाप दादा के सन्मुख उनकी शक्तिशाली दृष्टि का, उनके वरदानी हस्त का अपने सिर पर अनुभव करेंगे। ये अव्यक्त वतन हम सब बच्चों का आवाहन कर रहा है। सभी अव्यक्त वतन का अनुभव करो, अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर फरिश्तों की दुनिया की सैर करो।